इंडिया बोल शनिवार 6 मई सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नागरिकों को अपने शरीर पर मुकम्मल अधिकार नहीं है। इसी तर्क के सहारे आधार कार्ड के लिए आपकी उंगलियों और आंखों की पुतलियों के निशान लिए जा रहे हैं। सवाल है कि आपके शरीर पर हक किसका है, आपका या सरकार का? यही है आज बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811 7001 पर। चर्चा थोड़ी देर में, पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। फ्रांस के चुनाव आयोग ने मीडिया और आम लोगों से अपील की है कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इमैनुअल मैक्रो की प्रचार टीम से हैक हुए ईमेल और दस्तावेजों को प्रसारित नहीं करें। फ्रांस में कल राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का मतदान होना है। कमीशन ने एक बयान जारी कर लोगों से जिम्मेदारी की भावना दिखाने को कहा है। बयान में ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने सलाह की अनदेखी की तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मैक्रों के सहयोगियों ने हैकिंग को फ्रांस के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश बताया है। इस मुद्दे पर पेरिस के लोगों का कहना है, नूच विडाल नाम के शख्स का कहना था कि मैं इसे लेकर हैरान नहीं हूं। हम जानते हैं कि विदेशी शक्तियां राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका निभाना चाहती हैं। वहीं डी डेनाटो का कहना था कि मुझे लगता है कि राजनेताओं के बीच हमेशा एक दूसरे पर प्रहार करने की प्रवृत्ति होती है। पहले ऐसा करने के दूसरे तरीके होते थे, आज के दौर में ये कंप्यूटर के जरिए होता है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया से मिली रिपोर्टों के मुताबिक देश के जिन हिस्सों में रूस की अगुवाई वाले प्रयास के तहत संघर्ष विराम लागू हुआ है वहाँ स्थिति बेहतर हुई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे देश में हिंसा में कमी आई है। रिपोर्टों के मुताबिक सरकार के लड़ाकू विमानों ने हामा के करीब बम गिराए हैं। समझौते का ऐलान गुरुवार को किया गया था, इसे तुर्की और ईरान का समर्थन हासिल है। राजनीतिक और सशस्त्र विरोधी गुटों ने ईरान के दखल की वजह से इसे मानने से इनकार किया है। फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने इस्माइल हानिये को अपना नेता चुन लिया है। वो पहले गाजा पट्टी में संगठन के नेता रह चुके हैं। वो खालिद मशाल की जगह लेंगे जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। ये पहला मौका है जबकि हमास ने फलस्तीनी क्षेत्र से नेता चुना है। चुनाव दोहा और गाजा में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। दक्षिण अफ्रीका के तीन पूर्व राष्ट्रपतियों ने देश के लोकतंत्र पर मौजूद खतरे को लेकर बहस की मांग की है। दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति जैकब जुमा ने संविधान का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से राष्ट्रपति पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति थाबो एम्बेकी ने कहा कि जो भी संविधान को नुकसान पहुंचा रहा है वो लोगों की भावनाओं की अनदेखी कर रहा है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति खालेमा मोंटलांटे ने कहा,
इफ वी अलाउ दिस अनहोलसम कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स टू कंटिन्यू व्हाइल वी वालो इन,
अगर हम राजनीति के इस अनैतिक चरित्र को चुप रहकर आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो हमारी पीढ़ी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये थे पूर्व राष्ट्रपति मोंटलांटे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जस्टिस लीला सेठ का निधन हो गया है। वो 86 वर्ष की थीं। जस्टिस सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज थीं। वो लंदन बार की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने ये परीक्षा 1998 में पास की थी। जस्टिस लीला सेठ के निधन पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। चीन के दक्षिणी शहर शेंजेन में साल 2015 में हुए भूस्खलन के मामले में भूमिका के लिए 45 लोगों को सजा सुनाई गई है। इस हादसे में 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में बेकार मिट्टी और निर्माण सामग्री ढह गई थी। मिट्टी भरने वाली कंपनी के मैनेजर को 20 साल की सजा सुनाई गई है। जिन लोगों को सजा दी गई है उनमें से करीब 20 सरकारी अधिकारी हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगे शख्स की मौत हो गई है। मरने वाले शख्स नेपाल के नागरिक थे और उनका नाम मिन बहादुर था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल पर आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन, और ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी सुन रहे हैं लाइव। आपने सुना, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान भारत सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि नागरिक अपने शरीर पर संपूर्ण अधिकार का दावा कर उंगलियों और आंख की पुतलियों के निशान देने से मना नहीं कर सकते। रोहतगी ने दलील दी कि शरीर पर संपूर्ण अधिकार का विचार एक मिथक है और ऐसे कई कानून हैं जो इस अधिकार पर रोक लगाते हैं। मुकुल रोहतगी ने उदाहरण दिया कि किसी को आत्महत्या करने की या फिर महिलाओं को अपना गर्भ शुरुआती दौर में गिराने की इजाज़त भी नहीं दी जाती, और उनका दावा है कि सरकार उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए इस अधिकार पर रोक लगा सकती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ये शरीर पर अधिकार संपूर्ण होता तो फिर आत्महत्या या नशीली दवाओं के सेवन से किसी को रोकना मुमकिन नहीं होता। आज इंडिया बोल में हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस दलील के आधार पर आधार कार्ड के लिए उंगलियों और आंखों की पुतलियों के निशान जमा करना कितना उचित है। हमारे साथ दो खास मेहमान भारत के अलग अलग शहरों से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उदयपुर से हमारे साथ हैं डॉक्टर SS आचार्य, जो अर्थशास्त्री होने के साथ ही भारत विकास अध्ययन संस्थान के पूर्व निदेशक और वर्तमान में ऑनरेरी प्रोफेसर हैं। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, गोपाल कृष्ण, जो सिटीजन फोरम और सिविल लिबर्टीज के कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में, और टेलीफोन लाइन खुल चुकी है, और आप सब लोग जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो हमें फोन कर इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं, फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1811-7000 और 1811-7001 पर। सबसे पहले मैं आता हूं आचार्य SS डॉक्टर आचार्य के पास, और डॉक्टर आचार्य अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप चर्चा की शुरुआत करते हुए बताइए कि जो मुकुल रोहतगी ने ये बयान दिया है उससे आप कितने सहमत हैं।
देखिए, ये जो मुकुल रोहतगी जी का जो बयान है, ये बेसिकली फिंगरप्रिंट और आई का कलर देने की बात नहीं है, एक यूनिक आइडेंटिटी की बात है जिसको लिंक करना है पैन से। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स और ये जो है, जो आधार जो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, फुल प्रूफ है, बायोमेट्रिक पैरामीटर्स के आधार पे है। हाइट, वेट, इरिस, फोटोग्राफ बदल सकता है, बट इसमें फोटोग्राफ नहीं बदला जा सकता क्योंकि हेलो
जी
हाँ। तो अभी आप जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेवल में, और वहां पे इमिग्रेशन के लिए आप उस कंट्री में एंट्री करने के लिए आपसे फिंगरप्रिंट्स, आईज, सब कुछ वो ले लेते हैं, वहां तो आप दे देते हैं। क्यों? वो इसलिए जरूरी है कि जब आप वापस आए तो ये वेरीफाई हो सके कि जो आदमी गया है वही वापस आएगा। तो इट इज ओनली ए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, पहचान पत्र के पैरामीटर्स है वो, आपके फिंगरप्रिंट्स और इरिस लेने की बात नहीं है। आपका ऐसा एक आइडेंटिटी होना चाहिए जो आप ही को रिप्रेजेंट करे, कोई उसका मिसयूज नहीं कर सके। और ऐसे हजारों केसेस हैं, लाखों केसेस हैं, तो बात उस पे है कि एक ऐसी आइडेंटिटी हो जिसको कोई फेक तरीके से बदल नहीं सके, बस यही चीज है
जी। डॉक्टर आचार्य जी, डॉक्टर आचार्य, हम बातचीत जारी रख रहे हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण हैं, जो सिटीजन फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के कार्यकर्ता हैं। गोपाल कृष्ण, आपने डॉक्टर आचार्य की बात सुनी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस बात पर विरोध जता रहे हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं, आप क्या कहते हैं?
जो डॉक्टर आचार्य और मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल ने कहा है वो बायोमेट्रिक के संबंध में भ्रामक बयान है, क्योंकि बायोमेट्रिक ये जीव विज्ञान के सिद्धांत पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं ये लोग। जीव विज्ञान कहता है, बायोलॉजी कहती है कि शरीर का कोई अंग नहीं है जो कि कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, बायोमेट्रिक डेटा, एक शरीर के ऐसे अंग से लिया जा रहा है जो कि हमेशा बदलता रहता है, शरीर का कोई ऐसा अंग ही नहीं है जो बदलता रहता है। इनका जो क्लेम है कि ये यूनिक आइडेंटिफायर है वो गलत है, ये पहचान पत्र कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफायर है। पहले सारे जो पहचान पत्र थे, आइडेंटिटी प्रूफ थे, उससे हटकर ये इसलिए है क्योंकि पहले के पहचान पत्रों में हम पहचान पत्र दिखाकर अपने आप पहचान साबित करते थे। इस मामले में नागरिकों को गुलाम की तरह, सब्जेक्ट की तरह बनाया जा रहा है, सिटीजन को सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद को साबित नहीं करता है। जो सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज डेटा रजिस्टर है आधार का, वो व्यक्ति को प्रूव करता है कि वो वही है जो कह रहा है कि वो नहीं है या नहीं है। और अपने देश में ये खुद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टडी कहती है कि 15% लोगों का फिंगरप्रिंट जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनका बदलता रहता है। तो और जो दूसरे देशों में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस यूएसए की चार चार साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने कहा है कि बायोमेट्रिक्स इनहेरेंटली फॉलिबल है। और दूसरी बात जो आचार्य साहब ने कही वो भी बिल्कुल भ्रामक है कि ये मामला सिर्फ पहचान जो फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन तक का नहीं है। आधार कानून कहता है कि वो फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, मतलब उंगलियों का निशान ले सकते हैं, आंख की पुतलियों का तस्वीर ले सकते हैं एंड अदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब वो आवाज का सैंपल और डीएनए भी ले सकते हैं। तो ये जो भ्रामक बातें बताई जा रही हैं, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, संसद को नागरिकों को अंधकार में रह करके कभी इसको शैक्षिक बताया जा रहा है, कभी बताया जा रहा है कि अनिवार्य है, ये बिल्कुल ही फ्रॉडुलेंट है, स्कैंडलस है।
जी डॉक्टर आचार्य, आपने गोपाल कृष्ण जी की भी बात सुनी, जो इन्होंने ये कहा कि जो शरीर के सारे अंग हैं वो बदलते रहते हैं, हाथ की उंगलियों के निशान बदलते रहते हैं, आंखों की पुतलियों के निशान बदलते रहते हैं, ये बायोलॉजिकल साइंस की बात कही इन्होंने। और ये कहा कि इस आधार से आप कितने सहमत हैं?
नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आया कि बर्थ के चार दिन बाद ही उसके माता पिता ने उसका वो आधार कार्ड बनवा दिया। तो नेचुरली वो तो शरीर के साथ बदलते हैं और ये जो साइंटिफिक चीज है ना उसका करेक्शन हो सकता है। और जो 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 एक सिक्योरिटी की बात है, तो जैसे अपन हॉस्पिटल में भी जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो वहां पे डॉक्टर का एक इथिक्स है, इथिकल कोड है कि वो इंफॉर्मेशन वो किसी और को लीक नहीं कर सकते। तो ये बाइंडिंग तो होना चाहिए कि इसका मिसयूज नहीं हो जाए, उस पर मैं डिफेंड नहीं करूंगा, बट एक आइडेंटिटी ठीक हो। और कितना मिसयूज हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपया जो जिनको पहुंचना, हम वेलफेयर स्टेट हैं, मतलब वेलफेयर स्टेट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हैं जो सही आदमियों को पहुंचे वो नहीं पहुंच रही है। उसको चेक करके ऑलरेडी एक साल में ही 1,00,000 करोड़ रुपया तो हमने बचा लिया उसमें, जो फालतू किसी ने पीडीएस का कार्ड फालतू बनवा रखा है, डबल बनवा रखे हैं, तीन तीन बनवा रखे हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। ये सेफगार्ड जो अभी गोपाल कृष्ण जी ने कहा, मैं ये मानता हूं कि वो बदल सकते हैं, तो उसका भी कुछ उसका इलाज निकाला जा सकता है कि 10 साल में 15 साल में उसका वापस रिविजन हो जाए।
जी हम ये डॉक्टर आचार्य, हम ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुनते हैं कि उनकी क्या चिंताएं हैं, वो क्या सोचते हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ सर।
राहुल कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं?
ग्राम अम्मा मजार, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार।
बिहार के चंपारण जिले से बोल रहे हैं राहुल कुमार जी। राहुल कहिए, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास आधार कार्ड है अपना और मैं उसे अपने लिंक करा कर रखा है गैस कनेक्शन के लिए साथ में सर
जी।
और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सर सरकार ने जो तर्क दिया है कि हाँ हम आप किस आधार पे कि हम बायोमेट्रिक ले सकते हैं कि शरीर के किसी भी अंक मत शरीर पे व्यक्ति का अधिकार नहीं है सर, इस तर्क के आधार पे तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज आप ये बोल रहे हैं, कहो कि कोई दूसरा मुद्दा आएगा तो उसमें आप फिर बोलिएगा
जी। आप इस तर्क से सहमत नहीं है, लेकिन आपको आधार कार्ड रखने में या उसे लिंक करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप ये कह रहे हैं जी। राहुल जी बहुत शुक्रिया।
नहीं चाहिए सर कि सुरक्षा का बंदोबस्त होना चाहिए कि हाँ आने वाले समय में किसी कोई दुरुपयोग ना हो सके इसका
जी, डेटा जो जमा हो रहा है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये बात सरकार भी कह रही है। और हमारे साथ जो है कुछ और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। जी अपना नाम बताइए।
हाँ हेलो
जी, अपना नाम बताइए।
नमस्ते, मैं राहुल कुमार झा बेतिया बिहार से बोल रहा हूँ।
अच्छा आप भी बेतिया से ही हैं राहुल कुमार झा जी, बताइए आपका क्या कहना है?
मेरा मानना है कि सरकार को यह हक है कि हमारे शरीर और संपत्ति पर हमें सीमित अधिकार दे
जी,
लेकिन
जी।
इसके पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई ट्रस्ट नेता या अफसर हमारे गोपनीय सूचनाओं का गलत उपयोग हम न करें
जी।
जैसा कि आधार कार्ड बनाते वक्त हमारी फिंगरप्रिंट ली जाती है जिसकी डिजिटल डेटा सरकार के पास है, किसी व्यक्ति विशेष को जबरन किसी जुर्म में फंसाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट का डेटा चुरा कर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बहुत आसानी से नकली 3D फिंगरप्रिंट बनाकर व्यक्ति के खिलाफ सबूत बना सकते हैं
जी।
इसलिए आधार से संबंधित डेटा की सुरक्षा और अनाधिकृत पहुंच पर मंत्री की जरूरत है।
जी बहुत शुक्रिया राहुल कुमार झा जी इस आपकी बातचीत के लिए। मैं एक बार फिर गोपाल जी के पास वापस आता हूं। गोपाल कृष्ण जी, आपने बात सुनी कि आपने जो कहा कि वो बदलता रहता है, लेकिन एक आपको भी शायद इस बारे में कुछ बताना चाहिए, या आप क्या सोचते हैं कि आखिर पहचान कैसे तय हो? फिर आपको क्या लगता है किसी की पहचान कैसे तय की जाए?
ये आधार संख्या है, ये कार्ड नहीं है। पहले तो इस भ्रम में कोई न रहे कि ये कार्ड है। ये 12 अंकों की संख्या है जो कि उंगलियों के और आंखों की पुतलियों के आधार पर बना है और भविष्य में आवाज पर और डीएनए के आधार पर बनेगा।
जी।
दूसरी बात है कि इसकी आवश्यकता का जहां तक सवाल है, संसद की एक समिति ने इसका पूरा छानबीन किया था और ये पाया कि सरकार ने जो पहले से मौजूद पहचान पत्र थे उनसे इसका कोई तुलना कभी किया ही नहीं। पहले से 15 पहचान पत्र मौजूद थे, ये 16वें की जरूरत किसने स्थापित कर दी, क्यों स्थापित कर दी, इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत हुआ है। और वह खुलासे ये हैं कि ये सारी विदेशी कंपनियां जैसे साफ्रान है, जैसे अर्नस्ट एंड यंग है, जैसे एक्सेंचर है, इन कंपनियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है। वो एग्रीमेंट हम लोगों के पास है। उस एग्रीमेंट में कहा गया है कि भारतवासियों का, सब लोगों का आंकड़ा इन कंपनियों के पास 7 साल तक रह सकता है। जब वो 7 साल रखने की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एज में 7 साल मतलब हमेशा के लिए होता है, 7 मिनट भी रखेंगे तो वही बात होती है। तो जो ये कहते हैं कि इसको गोपनीय रखेंगे, ये गोपनीय कहाँ है? तो दस्तावेजों के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के मुताबिक ये आंकड़े उनके पास मौजूद है। और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का तो हद देखिए कि कानून, आपको याद होगा आधार बनने के शुरुआत में ये 60 करोड़ लोगों के लिए था और 60 करोड़ लोगों के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, भारतीय जनसंख्या रजिस्टर बनने वाला था, अलग अलग बनने वाला था। लेकिन यूआईडीआई के साथ, भारतीय पहचान प्राधिकरण के साथ जो इन कंपनियों के साथ समझौता हुआ, वो 110 करोड़ लोगों के साथ उस समय ही हो गया था जबकि उनके पास अनुमति सिर्फ 60 करोड़ लोगों के लिए थी। तो इस पूरे मामले में, और जो संसद की समिति है वो बताती है कि जो प्राधिकरण काम कर रहा है वो अपना जो बजट बता रहा है, जैसे आज करीब 8,500 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है। अभी आचार्य साहब बोल रहे थे कि 1 लाख करोड़ कितना बच गया है। सबसे पहला सवाल है कि किसी प्रोजेक्ट में कितना अनुमानित बजट है ये बताया जाए। आज तक आधार के पैरोकारों ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आधार के ऊपर टोटल बजट का टोटल खर्चा कितना आएगा। वो टुकड़ों टुकड़ों में बताते हैं, जैसे कि 2009 से 2000 फरवरी 2017 तक करीब 8,500 रुपए खर्चे हुए हैं। ये 8,500 का मतलब ये नहीं, ये इनका बजट है। इन्होंने आज तक बजट तो इसका इसलिए नहीं बता रहे कि भारत में जब भी कोई पैदा होगा तब उसका आधार बनाने की व्यवस्था है और उसके लिए इन कंपनियों को, इनका नाम अभी मैंने लिया, हर एक इनरोलमेंट पर, पंजीकरण पे 2.75 रुपए जाएगा और ये उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से स्पष्ट होता है। ये 2.75 रुपए गुना 130 करोड़ जनसंख्या, ये पैसा इन विदेशी कंपनियों को जा रहा है और कुछ देसी कंपनियों को भी जा रहा है।
जी,
और
जी,
ये सिर्फ एक बार का खर्चा नहीं है।
जी 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 गोपाल कृष्ण जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, डॉक्टर आचार्य के पास चलते हैं। डॉक्टर आचार्य, आपने गोपाल कृष्ण की भी बात सुनी और हमारे कुछ श्रोताओं की भी बात सुनी। सबकी चिंता जो है, सबसे पहली एक जो चिंता है कि जो डेटा जमा किया जा रहा है उसके मिसयूज को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। ये आप श्रोताओं की बातचीत में भी सुन रहे हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात की चिंता जता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सुरक्षा के उपाय की दावा किया जाता है कि इसको सुरक्षित रखा जाएगा या बनाया जाएगा या वो सुरक्षित है, उस पर आप क्या कहते हैं, क्या कितना मानते हैं कि वो डाटा सुरक्षित है?
नहीं, मैं दोनों राहुल जी बिहार से जो बोले थे, मैं उनकी बात में बिल्कुल ठीक हूँ कि डेटा की सुरक्षा की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब उस पर मैं कोई डिपेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये, क्योंकि वो सुरक्षा
नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सरकार ने जो इंतजाम किए हैं कि वो जिसके आधार पर वो दावा कर रही है कि ये सुरक्षित है, वो क्या इंतजाम है और उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? अभी आपको पता होगा कि अभी कुछ लाख डेटा के लीक होने की जानकारी भी सामने आई है। जी,
आई थी वो, मुझे, मैं उसका अवेयर हूँ और वो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। और अभी जो गोपाल कृष्ण जी बता रहे थे कि काफी खर्चा इसमें भी हो रहा है, उसको भी मैं मानता हूँ। और डेटा कंपनियों को नहीं जाना चाहिए, एमओयू है तो ये गलत, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। डेटा अपने ही पास होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और केवल इन हाउस यूज होना, इन हाउस मीन्स इन कंट्री ही यूज होना चाहिए, इसका कहीं कुछ नहीं हो जाए, उसके सारे सेफगार्ड्स होने चाहिए। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और अगर कमियां हैं तो उनको सुधारा जाना चाहिए, बट मैं तो केवल यही डिफेंड कर रहा हूँ कि ऐसा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जरूरी है क्योंकि बहुत मिसयूज हुआ है।
लेकिन ये बात इन्होंने भी कही कि पहले से ही 15 पहचान पत्र इस देश में मौजूद हैं, अब ये 16वां पहचान पत्र सरकार लेकर के आई है, आपको क्या लगता है कि उन 15 पहचान पत्रों से हमारे देश के लोगों के, नागरिकों की जो पहचान संबंधी जरूरतें थी, क्या वो पूरी नहीं हो पा रही थी?
नहीं, उन पहचान पत्रों में कितनी मल्टीप्लिसिटी थी ये तो सामने आ गया, 2-3 साल में ही आ गया, वो मल्टीप्लिसिटी अब खत्म हो रही है ना, इससे लिंक कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि 3 फेक थे, वो 3 गए, उनका नंबर दिया था मैंने जब अभी गोपाल कृष्ण जी ने कमेंट किया मेरी बात पर, उनका नंबर दिया कि कितने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड, बीपीएल स्कीम्स में पेंशन, इसमें इतने मल्टीप्लिसिटी हो रही थी कि वो पैसा वेस्ट जा रहा, आधा आधा पैसा ऐसा या तो दोबारा जा रहा था या सही लोगों को नहीं पहुंच रहा था। तो उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स, हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम मतलब डेवलप्ड कंट्री की तरह नहीं है, इन सारी स्कीम्स को रेगुलराइज करने के लिए सही आदमी को सही, इसलिए एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए। लेकिन ये जो राहुल जी, दोनों राहुल जी ने बताया और गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये दूसरे कंपनियों के पास नहीं चला जाए, इसका मिसयूज नहीं हो जाए, इसको जरूर सेफगार्ड करना चाहिए, बट आई एम ओनली डिफेंडिंग के ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए ताकि कोई फेक फोटो बदल के, नाम बदल के वो नहीं कर सके, वो एक ही आदमी। पैन कार्ड्स में क्यों लिंक करने की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पैन कार्ड्स मल्टीपल पैन कार्ड्स बने हुए हैं अभी, मैं मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, हालांकि टाइम नहीं है इतना बनाने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ कंपनीज हैं और लैक्स ऑफ, इतने केवल 70-75 लाख कहते हैं कि हमारे पास 5 लाख से ज्यादा इनकम है, ये क्या ये सही है क्या इस कंट्री में?
जी जी डॉक्टर आचार्य जी, हाँ जी, आपने अपनी बात कही,
ऐसे ऐसे सब कंसर्न को चेक करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए
की जरूरत है। जी मैं इस बात पर फिर वापस आता हूँ,
नहीं जाए, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ कि जाने दो, गोपाल कृष्ण जी सही है उसपे, दोनों राहुल लोगों ने भी कहा कि नहीं वो डेटा सुरक्षित रहना चाहिए, कहीं मिसयूज नहीं हो जाना चाहिए, दूसरे वाले राहुल जी ने बताया एक एग्जांपल, यस इसका मिसयूज हो सकता है, उसका सेफगार्ड बहुत जरूरी है, मतलब।
जी 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 डॉक्टर आचार्य, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, आपके पास आने से पहले फिर कुछ और लोगों की बात सुनते हैं। जी अपना नाम बताइए।
हेलो अवधेश कुमार सर, भदोही जिला ग्राम आर्था।
अवधेश कुमार जी भदोही जिला से बोल रहे हैं, जी बताइए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
सबको नमस्ते सर।
जी जी नमस्ते, नमस्ते, हमारी तरफ से भी नमस्ते, अपनी बात समय कम है, थोड़ा जल्दी कहिए प्लीज।
हम बाएं पैर से विकलांग है और हमारा आधार कार्ड बना है, उसमें विकलांग शब्द नहीं लिखा है, तो क्या उससे प्रमाणित हो जाएगा कि मैं विकलांग हूँ मैं?
जी बायोमेट्रिक की बात हो रही है, इनका जवाब आपको जो है वो देंगे डॉक्टर आचार्य, लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों की बातचीत हम सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे आपके इस सवाल के जवाब के लिए। जी अपना नाम बताइए।
मेरा नाम सुरेंद्र कुमार भगत है।
सुरेंद्र कुमार भगत जी कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं मधुबनी जिला, बिहार के मधुबनी जिला।
जी जी जी
जी
मधुबनी से सुरेंद्र कुमार जी बताइए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
मेरा कहना यह है सर कि ये आधार कार्ड जो बना जा रहा है वो बात सही है कि सर, लेकिन इसका कोई सीमा हो कि हाँ इतना तक बनना चाहिए, या पूरे लोग को भी है कि कोई चीज में लिंक करा देते हैं और कभी लोग कहते हैं कि हाँ जी ये अनिवार्य नहीं है।
अच्छा।
तो सर इसका कोई मतलब इसका कोई वास्ता है, थर्ड ठिकाना है या नहीं है? कभी सरकार कहते हैं कि हाँ अनिवार्य करो, कभी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अनिवार्य नहीं है, कभी अनिवार्य है, तो इसका क्या मतलब है?
जी आपके इस सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। जी अपना नाम बताइए।
हेलो।
जी अपना नाम बताइए।
जी डॉक्टर आर्यन बिंद जौनपुर से।
जी डॉक्टर आर्यन बताइए जौनपुर से क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
हम ये कह रहे थे कि जैसे अभी इसका यूज तो ठीक है, मतलब मिस यूज ना होने पाए। दूसरी बात ये जैसे प्राइवेट कंपनियां जो बाजार में खोले हुए हैं दुकान, सब पैसा ले लेकर कमा रही हैं और गरीब जनता इसमें बेचारे थके जा रहे हैं
जी,
ये आधार के नाम पे, तो इस पर भी वो होना चाहिए ना, क्या स्टंट है गवर्नमेंट का?
जी, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि इसके लिए सरकार कोई पैसा नहीं लेती है, नहीं, लेकिन जो एजेंसी
जी है, जी जो, लेकिन बाजार में तमाम केंद्र खोल के सब बैठे हैं और वहाँ 50 रुपए 100 रुपए लेते हैं। जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, रसीद देंगे, उसके बाद फिर जो है वो जब निकालने जाएंगे आप, तो उसके बाद फिर 50 रुपए लेंगे, 100 रुपए लेंगे।
जी डॉक्टर आचार्य, मैं आपके पास आता हूँ। आपने सुनी हमारे लोगों की बात। एक सज्जन ये पूछ रहे थे कि मैं विकलांग हूँ लेकिन मेरे कार्ड पर विकलांग नहीं लिखा हुआ है, तो उसका पता कैसे चलेगा कि मैं विकलांग हूँ। दूसरा, आपने सुना कि उन्होंने ये चिंता जाहिर की कि कभी कहते हैं कि ये स्वैच्छिक है और कभी कहते हैं कि अनिवार्य है, कभी कहते हैं कि ये टिकट लेने के लिए भी ज़रूरी है, पैन कार्ड से भी जोड़ना है, और कभी होती है बात की नहीं नहीं सब स्वैच्छिक है। तो ये जो एक मतलब दुविधा की स्थिति बनी हुई है वो कैसे दूर होगी? और तीसरी बात, इन्होंने जो कही कि जो निजी दुकानें खुल रही हैं जहां पर आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं वहां पैसे लिए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर?
मैं तीनों पे थोड़ा थोड़ा कमेंट दे दूंगा।
जी,
जैसे वो अवधेश जी जो कह रहे हैं कि वो विकलांग है और आधार में, मेरे ख्याल से आधार में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इस तरह की चीज आ सके, तो वो तो दूसरी जगह से ही बनवाना पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा कोई और नहीं उठा सके। अगर वो सर्टिफिकेट और ये आधार लिंक हो जाएंगे तो ये अवधेश जी को ही, उसके जब भी कोई बेनिफिट होगा तो अवधेश जी को ही मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आधार में ऐसी चीजें तो नहीं आ पाएंगी, एक तो उनका तो ये था। और सुरेंद्र कुमार जी मधुबनी वाले, वो जो कन्फ्यूजन है ना, कभी अनिवार्यता है और वो है, वो तो अब धीरे धीरे चूंकि प्रोसेस में है। एक चीज और समझनी चाहिए कि अभी 100% लोगों के देश में कार्ड नहीं बन पाए हैं, इसीलिए तो कई स्कीम्स में बीपीएल की स्कीम्स और राशन कार्ड में छूट देनी पड़ी कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि सबके बने ही नहीं है और बनने में टाइम भी लगेगा, काफी रिमोट एरियाज भी हैं, तो वो थोड़े दिन रहेगी, थोड़े धीरे धीरे। जैसे अभी भीम ऐप प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, भीम ऐप आधार पे, तो अब वो सबके पास नहीं है तो इसलिए उसको कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता। तो ये थोड़ी सिचुएशन थोड़े समय तक, जब तक ये अश्योर नहीं हो जाए कि हर एक आदमी, बच्चा पैदा हुआ और थोड़े दिन में ही उसका आधार बन गया, तब तक ये कहीं कहीं जैसे अभी पैन कार्ड के लिए किया है, केवल कंपलसरी करने की कोशिश कर रही है, तो वो ये सिचुएशन थोड़े दिन तक रहेगी क्योंकि 100% लोगों के पास अभी नहीं बन पाए हैं।
जी।
और तीसरा, जो ये आर्यन साहब जो जौनपुर से कह रहे थे कि बनवाने में खर्चा आता है, तो अब ये तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा।
जी,
मतलब
जी।
इससे यूनिक आइडेंटिटी के जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अब ये तो हर काम में ही हमारे यहाँ देश में होता है, तो ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जाके कहें तो वो कुछ कर सकते।
जी बिल्कुल। हम वापस एक बार फिर गोपाल कृष्ण जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बिश्नोई जी। जी बिश्नोई जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
जी मैं रामेश्वर लाल बोल रहा हूँ।
हाँ, हाँ रामेश्वर लाल जी,
ये कह रहा हूँ कि जो आधार कार्ड का जो बना है उसको बना वर्तमान में चल रहा है और ज्यादा व्यापक रूप से बनाना चाहिए। इसमें ऐसा हमारे जयपुर में एक हुआ था कि पुलिस ने अज्ञात लाश का उसके पता लगाने के लिए उसका उपयोग में लिया था और उसमें काफी हद तक वो सफल रहे थे, और इसको व्यापक बनाना चाहिए। और उसके साथ ही अगर आधार कार्ड अलावा और हमारे राजस्थान में तो और सारी फमसा योजनाएं चला रही हैं, इससे देखा था कि वो नहीं होना चाहिए, एकमात्र आधार कर देना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब ये जो आईडेंटिटी कार्ड वो चल रहे हैं वर्तमान में
जी।
उनका मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य रह जाएगा अगर 100% आधार को लागू कर दिया जाए।
जी बहुत शुक्रिया बिश्नोई जी। गोपाल कृष्ण जी, आपने चर्चा पूरी सुनी और बिश्नोई जी की भी बात सुनी। वो कह रहे हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान में एक किस्सा हुआ था जिसमें कुछ लाशें थी, उनके पहचान में आधार कार्ड से सुविधा मिली। दूसरी बात एक और चर्चा के दौरान आई थी कि आईडी कार्ड कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है कि सब लोगों के पास बहुत सारे तरह तरह की आईडी कार्ड थी, लेकिन उसमें बहुत फर्जीवाड़े भी होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। और ये एक सरकार की तरफ से कोशिश थी जो सब लोग मान रहे हैं कि ये तय करने की कि उस फर्जीवाड़े को रोका जा सके, आपको नहीं लगता ऐसा?
नहीं, एक तो एक सरकार ने के प्रचार तंत्र ने इतनी गलत फहमियां फैलाई है कि आधार का मूल मकसद क्या है और आधार क्या किस बात का संकेत देता है इसके बारे में ही समझ नहीं है।
जी।
आधार पत्र नागरिकता का पहचान नहीं है
जी।
वो इस देश में रहने वाले जैसे दलाई लामा जी हैं उनके लिए भी बना है
जी।
तो ये देश में रहने वालों के लिए है, नागरिकों के लिए नहीं है
जी।
इससे फर्क क्या पड़ता
समय,
है?
समय नहीं है हमारे पास जी, मैं मुझे ये यही रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत अब समय नहीं है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे स्टूडियो मैनेजर इशारा कर रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।